राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। वी आर ऑल वेलकम फॉर आवर थर्सडे क्लास। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं परीक्षित महाराज के सृष्टि विषय प्रश्न पूछने के ऊपर कि भगवान कैसे क्रिएशन करते हैं। क्रिएशन भगवान की, भगवान का वैभव है, करुणा है। और सुखदेव महाराज भगवान की क्रिएशन, व्हेन ही वांटेड टू एक्सपेंसवर अबाउट द क्रिएशन ही इमीडिएटली थॉट ऑफ ऑफरिंग मंगलाचरण। भगवान को प्रार्थना करने का मन बना लिया कि भगवान की कृपा से भगवान ही मेरी वाणी के ऊपर विराजमान होकर और अपनी सृष्टि का, सृष्टि लीला का वर्णन करने की मुझे मति दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें, ही में यूज मी एज ए इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लेन व्हाट ही वांट्स अबाउट द क्रिएशन। सो 12वें श्लोक से लेकर हम प्रार्थना में तीन विभाग हमने समझे थे। पहले नमस्कार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भगवान के विषय में श्रवण करने से सब मंगल होता है। शुभद्र सर्वसे, शुभद्र मंगलकारी कार्य होता है सर्वसे मतलब श्रवण करने से। सो जो श्लोक हमने लास्ट टाइम में छोड़ा था वहां 17वां है, वहां से आगे अब श्रवण शुरू करते हैं। बोलिए तपस्वीनो दान परा यशस्वीनो मनस्वीनो मंत्र विदः स्वमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायत अर्पणं तस्मै शुभद्र सर्वसे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी एक बात कह रहे हैं, विना यद अर्पणम, भगवान को अर्पण किए बगैर कुछ भी कर लो, तपस्या कर लो, बड़े से बड़े महान तपस्वी बन जाओ, दान पराय बड़े से बड़े दानवीर बन जाओ, यशस्वी नो बहुत बड़ा कोई यश का कार्य करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम एक्टिविटी एक्सक्लूसिव कर लो, एंड फोर्थ मनस्वी नो, मनुष्य मतलब मुनि, मननशील मुनि, मुनि मीन्स फिलोसोफर, मननशील दोस स्कॉलर बन जाओ, मंत्र विदः बहुत बड़े मंत्र उच्चारण करने वाले वेदा वेद आचार्य बन जाओ, और सिक्स सुमंगल ही बड़े मंगलकारी कार्य करने वाले वैदिक स्वाहा यज्ञ कुछ भी करने लग जाओ, ये सब करो, क्षेमम न विंदति कोई लाभ नहीं होगा, देयर इज नो बेनिफिट। इतना सब करने से कुछ लाभ नहीं होगा विना यद अर्पणम, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के बगैर। और इस अर्पण शब्द को आपके दिमाग में आए तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक याद आना चाहिए, यद करोसि यद स्नासि जोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। प्रभुपाद जी ने यह श्लोक कोट किया है इसमें, तो उसमें यज्ञ भी है, तप भी है, सब कुछ है, को भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करके करते रहो। तो एक शब्द आज सीख के जाइए, कोई भी काम आप करते हो दो स्तर हैं, अर्पणम वाला स्थान जो है काम करके फिर अर्पण करना है, यह है निष्काम कर्म योग। काम आप करोगे अपने मनसा और अर्पण करोगे भगवान को बाद में, एक ये रास्ता है। और दूसरा है काम करने से पहले भगवान को अर्पण करके फिर काम शुरू करो, तो दो के दो शब्द आज सीख लो। मानो आप मंदिर में आए हो, आपने अपना काम तो अपने इच्छा से किया, धंधा किया, नौकरी किया, आपको दान यहां देना है, तो कहो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। ये वह श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान को अर्पण किया। तो जो कुछ आपने किया भगवान को अर्पण शब्द कह दिया तो वो आपका सफल हो गया, उसका लाभ हो गया। तो एक शब्द याद कर लो, कोई भी कार्य करो कहो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और इससे अच्छा नया कार्य कोई शुरू करने जा रहे हो, भाई कोई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, नौकरी शुरू कर रहा हूं, घर नया ले रहा हूं, तो एक और मंत्र याद कर लो। काय के लिए ले रहे हो, क्यों नौकरी करना चाहते हो, तो एक बात याद करो श्री कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और हायर वैष्णव ट्रेडिशन ये है, हरि गुरु वैष्णव प्रति अर्थे अहम यज्ञ करिष्यामि, अहम तप करिष्यामि, अहम जप करिष्यामि। मैं जप करता हूं, मैं तप करता हूं, मैं यज्ञ करता हूं हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। तो ये तद अर्पणम से ऊपर हो गया, क्यों, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो वो कार्य कर देगा सफलता। तो हमारे भक्तों को कोई भी कार्य करने से पहले, जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जाए तो भी भाई भगवान की प्रसन्नता के लिए इसका भला हो ऑपरेशन कर रहा हूं, तो काम ऑपरेशन का करना है। हाँ, तो ये यहां शब्द क्या है इसके, इस वक्त श्लोक कौन सा याद आना चाहिए भगवत गीता का, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुसम्र युद्धे च, युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो। तो युद्ध करते का मतलब जो आपका कर्तव्य कार्य है वो करते हुए मेरा स्मरण किया करो। तो आप चाहे ऑपरेशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, तद अर्पणम कहना या भगवान की प्रसन्नता के लिए कहना, ये एक बुद्धिमानी से शब्द सीख लो जीवन में, एक आदत पड़ जाए। हमें कोई अभी आदत पड़ गई, कोई चीज को देते श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर रखते, भगवान आपको अर्पण किया, तो ये एक शब्द कहना। ये श्लोक सुखदेव महाराज कहते हैं, इतने सारे बड़े तपस्वी यज्ञ तप ये करने वाले अगर भगवान को अर्पण नहीं करेंगे कोई लाभ नहीं है। कार्य सारे बहुत अच्छे हैं लेकिन भगवान को अर्पण के बगैर बेकार हैं। तो ऐसा भगवान जिसको अर्पण करने से सारे कार्य, सब कार्य सफलता देते हैं, ऐसे मंगलकारी सुभद्र परम कल्याणकारी भगवान का श्रवण करना चाहिए जो सबको लाभ देता है। ये बात समझ में आया? तो आज से क्या सीखा, एक चीज, कोई भी काम आपको कृष्ण अर्पण मस्तु कहना शुरू कर दो। प्रसाद सामने आए तो कहते हैं ना, पहले ही प्रार्थना करते हैं, महाप्रसाद है, आ गया है, ये भगवान को अर्पण हुआ है, प्रसाद आया। तो ये जैसे इस तरीके से हर कार्य को भगवान से संबंध जोड़ लो, कोई भी कार्य है उसको भगवान से जोड़ लो। तो यहां छह नाम लिखे और इसके अंदर और सब भी आ जाए, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, दान पराय, ये चार हो गया, और सुमंगल ही बड़े मंगल कार्य यज्ञ करने वाले, वेद और वेद पढ़ने वाले, ये सब कुछ भी करे अगर कृष्ण अर्पण नहीं किया तो कुछ लाभ नहीं है। दान बेकार गया, यज्ञ तप सब बेकार गया। कितनी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की, कितनी तपस्या रावण ने की, लेकिन हरि अर्पण नहीं किया तो कोई काम हुआ क्या? इतनी तपस्या करना के बाद भी सब कुछ नाश हो गया कि नहीं नाश हो गया? तो ऐसा एक शब्द ये आज याद करके श्लोक से सुखदेव महाराज कहते हैं, कार्य कोई भी करो तो भगवान को अर्पण कर दो। अच्छा, कोई कहते भाई शुभ करें कि अशुभ करें, तो भगवदगीता का श्लोक इसके बाद क्या, अर्पण के बाद शुभाशुभेर फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंध, शुभ हो या अशुभ हो, मतलब लड़ाई कौन सा शुभ कार्य है? अर्जुन क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आदमी मार रहा है, शुभ कार्य तो नहीं है ना, लेकिन भगवान को अर्पण करने से यज्ञ हो गया, तो शुभ हो या अशुभ हो लेकिन अर्पण भगवान को करना, तो वो उसका अशुभ अपने आप खत्म हो जाएगा। शुभाशुभेर शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं, कि भगवान ने जब अर्पण किया तो लोग कहते हैं अब हम कैसे अर्पण करें। अभी एक कोई एग्जाम्पल इसको नहीं लेना चाहिए, एक चोर था, वो चोरी करे कृष्ण अर्पण करता था, तो भगवान इतने परेशान हो गए एक बार कि अब इससे क्या करूं, भगवान आए तो भगवान को ही लूट लिया और भगवान को कहा आपको ही अर्पण करता हूं। आदत पड़ जाने से उनका भी कल्याण हो जाता है समय आने के ऊपर, कहते 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 कहते। सो शुभ अशुभ ऐसे बहुत से, आप अशुभ के हिसाब से कहेंगे वो जो कुब्जा थी तो अशुभ कार्य करने वाली थी, लेकिन कृष्ण को चंदन अर्पण किया तो सुंदरी बन गई। कुब्जा क्या करती थी? अच्छा काम तो नहीं करती थी ना। गिनका क्या काम करती थी? वैशा। वो तोते से भागवत सुनी, वो तोता किसी संत के घर से आया, वो कहता मिठू कुछ क्या करूं, बोला राम राम बोलो। हाँ अच्छा राम राम। वो राम राम करती करती वो अशुभ कार्य करने वाली भी राम राम करती करती उसका उद्धार हो गया। तो अच्छे संग से शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन भगवत अर्पण करने का एक जीवन में लक्ष्य बना लेना चाहिए। ये तो इसमें से तो हम बहुत कम काम करते हैं, तपस्या कहाँ करते हैं, हम दान कभी कभार देते हैं, बाकी मनस्वी तो हम है नहीं, मंत्र हमको आता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बातें लिखी है। तो आप तो छोटे काम से काम शुरू करो, जहां छोटा है वहां कृष्ण अर्पण कहना शुरू कर दो। और इससे सुखदेव महाराज क्या कहना चाहते हैं कि ये जो मैं कथा भी करना चाह रहा हूं ये भी कृष्ण अर्पण में, क्योंकि ये भी मंगल कार्य है, सुमंगल ही कार्य है, तो ये कृष्ण अर्पण करूं। मैं अपनी तरफ से इस कथा का कहने वाला हूं, ये मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। तो इसलिए इस श्लोक कहने के बाद, अब ये श्लोक जो है बड़ा अद्भुत श्लोक है, प्रभुपाद जी इस श्लोक को हमेशा उद्धृत करते थे, तो आइए इसका पाठ कीजिए। किरात होणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यवना खशाद्य। जैसे वो श्लोक था ना, इसमें ये दो लाइन जो पहले है इसमें तो नाम है 6-7, और अब उसके नीचे क्या है, उसमें अर्पणम था, इसमें क्या है सुन लीजिए। ये अन्या च पापा, इसका मतलब जो ऊपर गिनाए गए ये और भी जो पाप करने वाले हैं, इसका मतलब ये तो पाप वाले हैं ही, इसके अलावा कुछ रह गए हैं तो वो भी गिन लेना, क्योंकि आज ये इसकी लिस्ट में आजकल के पापी नहीं आते ना, जो मॉडर्न पापी है, जो मॉडर्न जो एडवांस पापी है वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। तो वो भी इस लिस्ट में ये अन्य कह के उन सबको इंक्लूड किया। अब ये मुख्य शब्द है, उसमें क्या मुख्य शब्द था, तदर्पणम, और इसमें क्या मुख्य शब्द है बोलिए, यद पाश्रया श्रिया। अगर वो भगवान के भक्तों का शरण ले ले, क्योंकि भगवान का सीधा शरण लेने के वो योग्य है ही नहीं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा दयालु है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान से भगवान के भक्त ज्यादा दयालु नहीं, शक्तिमान भी है। राम जी तो पुल बांध गए, हनुमान आकाश से उड़ के चले गए, तो हनुमान तो को भगवान ने जरा ज्यादा ही शक्ति दे दी अपने से। तो ऐसे कार्य करने में भगवान का भक्त अद्भुत कार्य करता है, ये भगवान की कृपा से। तो भगवान का भक्त किसी का उद्धार करना चाहे तो भगवान के भक्त का अगर ये भी आश्रय ले लें सब, तो इनका भला करता है। बोला कौन करता है इसका भला? ऐसे ना समझे भक्त के मैंने भला किया है, तो बड़ी बहुत बड़ी नीचे की बात लाइन है और पढ़िए आगे। शुद्धयन्ति तस्मै, ये सारे शुद्ध हो जाएंगे, ये सारे पवित्र हो जाएंगे। अभी इनकी कथा करेंगे, इनके नाम पढ़ेंगे कि कौन शुद्ध करेगा उनको। अब ये शब्द मुख्य है। दूसरा, प्रभु विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का प्रभाव उनको शुद्ध करेगा। जैसे एक शब्द बोलते हैं ना, विष्णु विष्णु विष्णु, पवित्र हो गया सब, बाया भिंत्र सुचि सुचि सुचि, सब पवित्र हो गया केवल विष्णु कहने से। तो प्रभु विष्णवे, विष्णु के प्रभाव से, भगवान विष्णु के प्रभाव से। तो भगवान विष्णु इसमें कहाँ है ऊपर? बोला भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु होता है, भगवान के हृदय में भगवान विष्णु होता है, इसलिए वो भगवान के भक्त जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका कल्याण हो जाता है। ये श्लोक प्रभुपाद के कई कथाओं में आया। किरात हुण आंध्र पुलिंद, एक किरात है, एक हुण है, एक आंध्र, एक पुलिंद है, पुलकच है, पांच। आभिर छह, शंबा सात, यवना आठ, और खस आदि और अन्य इसमें बाकी सारा है। और श्री प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है महाभारत से, कि इसमें से किरात, किरात वैसे शिकारियों को बोलते हैं जो शिकार करते हैं जंगल में, जो शिकार करते हैं जंगली आदिवासी, दे आर कॉल्ड किरात। तो श्री प्रभुपाद ने कहा द पार्ट ऑफ दी, यहां लिखा है बिहार में छोटा नागपुर, और ये कुछ एरिया ऐसे और भी जगहों पे बहुत है, लेकिन महाभारत में इसको किरात एरिया कहा गया है। तो किरात भी भगवान के भक्तों का शिकारी, एक शिकारी था, क्या नाम था उसका, वो शिकार करने जा रहा था, देखा एक महात्मा बैठा है जंगल में। महात्मा को, इतना शिकारी होते हुए भारत में पैदा हुआ है, महात्मा को प्रणाम किया। मन में आया कि संत क्यों जंगल में बैठा है, इसके लिए आज जो शिकार मिला महाराज को दे दूंगा। वो गया, एक हिरण मिला और जिंदा हिरण पकड़ के आया, बोला महाराज 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 बाहर आया, बोला महाराज ये शिकार आपके लिए आया हूं। अरे बाबा खोलो, कहां पकड़ के लाए हो, जीव को मारने के लिए हिंसा क्यों करते, खोलो खोलो। खोला तो हिरण भाग गया, बोला महाराज इतना मेहनत करके शिकार लाया, आपको अर्पण कर रहा था, अब बोला खोलो खोलो ये भाग गया। तो बोला ये तो जीवित हिरण को मारने के लिए लाए थे, तो फिर क्या आप करते हो यहां, क्या करने आए हो जंगल में आप महाराज, शिकार नहीं करते हो तो जंगल में क्या करते हो, उसको तो यही पता है कि जंगल में शिकार किया जाता है। महाराज ने कहा इसको क्या कहूं कि मैं भगवान का भजन करता हूं। बोला हम भी शिकार करते हैं लेकिन कृष्ण मृग का शिकार करने आए। बोला वो क्या होता है, तो बोला कृष्ण मृग सांवला होता है, मोर का पंख उसके सर के ऊपर होता है, हाथ में बांसुरी होता है, पीला पीतांबर पहना होता है, उसका शिकार करने। बोला महाराज अब तीन दिन मेरे को दे दो, इस जंगल में होगा तो मैं पकड़ के लाऊंगा। वो बेचारा समझा नहीं कुछ, महाराज ने बोला जान छूटी गया भाई, ये तो हिरण को तो छुड़ा दिया, महाराज तो अपना जप करने बैठ गए, ये तो दूसरे दिन का। बोला महाराज के लिए कृष्ण हिरण चाहिए, कहां है कृष्ण हिरण चाहिए, दो दिन न खाया न पिया। भगवान परेशान हो गया कि ये तो पागल है। तो थोड़ी देर जाल के अंदर देखे तो एक कोई जीव आया है, तो जाके देखे अरे ये तो वो हाथ में बांसुरी है, टेढ़ा है, इधर मोर पंख है, ये आ गया कृष्ण महाराज का, मिल गया, उठा के पीठ के ऊपर रखा उसको और लाया महाराज महाराज। तब महाराज अंदर से बोलता है क्या है, फिर किसी को पकड़ के लाया होगा। बोला महाराज आपका कृष्ण हिरण लेके आया। महाराज बाहर आया, बोला खोलो खोलो। बोला नहीं नहीं खोला भाग जाएगा, पहले भी भाग गया था, मुश्किल से तीन दिन से मिला है, तीन दिन भूखा मरा हूं तब मिला है महाराज। बोला ये भागने वाला नहीं है, खोलो। उसको खोला, महाराज ने प्रणाम किया, भगवान को प्रार्थना करके दे, मैं यहां 10 साल से तपस्या कर रहा हूं, आप मेरे को तो मिले नहीं, और ये तीन दिन में आपको जाल में पकड़ लाया। भगवान कहते इसने आपका शरण ले लिया ना, तो इसके ऊपर कृपा पहले हो गई कि आपका शरण लिया, साधु का शरण लिया, अब ये कौन सा अच्छा काम करके आया। लेकिन साधु को अर्पण किया, अब तो उस साधु का मन ही बदल गया, जीवन में भगवान उसको मिल गया संत, मिल संत की कृपा से। तो ऐसे क्रात शिकारी भी कोई संत की सेवा करे तो उनका कल्याण हो जाएगा, बहुत कल्याण हो जाएगा, भगवान की कृपा से उसका जीवन ही बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब ये हो गया किरात। इसके आगे लिखा है आंध्र, आंध्र वैसे आंध्र प्रदेश, प्रभुपाद ने आंध्र प्रदेश सीधा लिख दिया है लेकिन एक रामदास आंध्र प्रदेश के ऐसे भक्त हुए हैं जो किसी समय संतों की सेवा के लिए लाखों रुपये खर्च किए, 7.5 लाख रुपये राम का मंदिर बना दिया संतों को लिए, और उस वक्त के राजा ने उसको जेल में डाल दिया। बड़ा संत तो बहुत बड़ा सेवा किया, उसने बोला पैसा तो सरकार का लेकर डाला है, जेल में डाल दिया। तो अंदर बैठ के उन्होंने रामायण लिखी आंध्र भाषा में, इसमें बाबू दशरथी शतक रामचंद्र के ऊपर, पता नहीं आपका कोई है तो किसी ने देखा है दशरथी शतक, देखा है किसी ने, सुना है पढ़ा है, रामदास के मंदिर अभी तक है, वो रामचंद्र का मंदिर अभी है वहां, भद्राचलम में मंदिर है ऊपर। अब ये जब लग के पूरा किया तो राम जी रामदास बन के गए, उसके पास बोला कितना पैसा तुम्हारा गया, 7 लाख गया, ब्याज कितना हुआ, इंटरेस्ट ले लो सब, और उसको वहां से बाहर निकाला, बोला आप आजाद हो जाओ। उसने बोला किसने पैसा दिया, बोला आप ही तो आए थे, बोला मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे बाहर आया। लेकिन भगवान उसकी सेवा को देखकर संतों की सेवा किया। ये श्रीरंग मंदिर जो बड़ा है ना दुनिया का बना हुआ, ये पहले दान मांगने गए एक महात्मा, नाम क्या है उसका, पूरण कुछ नाम है, अभी मेरे को याद नहीं है। हाँ, पहले दान मांगने का किसी ने नहीं किया, बोला ये सीधा नहीं देंगे, वे घी उल्टी उंगली से निकलेगा, सबको लूटना शुरू किया, और जब पैसा चोरी का आए वो मंदिर बनना शुरू किया। कितने सालों में बना है वो लिखा है, इतने सालों में ये मंदिर बना है, वो सब चोरी से मंदिर बना है, डाका डाल के मंदिर बना है। ये पढ़ा है किसी ने, याद है किसी को? अच्छा, ये जो श्रीरंग में इतना बड़ा मंदिर है, कितने साल, 62 साल लगे हैं, और इतने में वो सब ढाका डाल के उसने मंदिर बनाया भगवान का, और कुछ नहीं किया। लेकिन काम कहां से लाया, पैसा सब लूट के लाया, और आखिर में जो पार्टनर डाकू थे वो हिस्सा मांगने लगे, तो भगवान ही उनको ले जाके समुद्र में डुबा के आए, काम इसका हो गया। तो ये आंध्र जाति में ऐसे मान भक्त हैं। उसके बाद पुलिंद की बात प्रभुपाद लिखते हैं महाभारत के आदि पर्व में, भीष्म पिता भीमसेन और सहदेव वहां गए थे इस पुलिंद देश के, और ये यूनान है ग्रीक। पुलिंद कहां है, बोला ग्रीक, इसका मतलब महाभारत के समय में यूनान तक भारत था। और लिखा है कि इन फ्यूचर में, प्रभुपाद लिखे, इन फ्यूचर में यहां यूनान के लोग आके भारत के ऊपर राज करेंगे, और अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां से आया, सिकंदर, प्रभुपाद ने कहा यह सत्य हुआ, वहां से अलेक्जेंडर आया था। आपको पहले एक बार मेरे ख्याल में लास्ट टाइम बताया था कि मामा शल्य जो नकुल और सहदेव के मामा है वो इराक के राजा थे, और ये पूरा क्षेत्र जहां हम रह रहे हैं ये पूरा शल्य की राजधानी थी, ये क्षेत्र पूरा शल्य का था। तो शल्य भाग लेने के लिए गया था युद्ध में, तो यहां से ये इस क्षेत्र की सेना लेके आया था, दुर्योधन की ओर से लड़ा था बाद में जाके। तो ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है पुलिंद, जिसमें ग्रीक आता है। और उसके बाद है आभीर, महाभारत में आभीर का वर्णन है। आभीर को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुत से लोग परशुराम के भय से सरस्वती को अपना सिंध प्रदेश से आगे अरब महासागर को पार करके चले गए, और इस पूरे क्षेत्र में बस गए ये लोग। आभीर को कहीं आहिर भी कहते हैं, कभी आभीर भी कहते हैं संस्कृत में। इसमें भी बड़े भक्त हुए हैं अपने समय पे, और ये भी आगे चल के भारत में राज करेंगे। प्रभुपाद जी मामद गोरी के राज का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये भी यहां से सब आए, तो इनका यहां वर्त है। ये सब ये तो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को अब बाकी जो आगे लिखा हुआ है खस, ये खस तो बहुत आसानी से प्रभुपाद ने क्या कहा, मूस जिसकी है नहीं, चाइनीज और मंगोल खस है, और चाइनीज और मंगोल की पूरी सेना महाभारत में आई थी भगदत्त के साथ, भगदत्त वान उनका लीडर था, एक अक्षौणी सेना आई थी चाइना से, खस आए थे सारे, वो दुर्योधन की तरफ से लड़े थे, तो चाइना बस दैट महाभारत में भाग लिया था, तो ये सब वहां से आए थे। तो ये पूरा पुराना भारत का इतिहास है। और एक बीच में लिखा है यवनों का वर्णन लिखा है कि ये तो सब महाराज ययाति के, ये महाराज ययाति के पुत्र थे, जो जाके कहां जाके इन्होंने राज किया, एक तो तुर्वसु था, एक यवन था, ये तुर्की में चले गए, और ये बाद में इनके वंशज हुए चंगेज खान। आधी धरती के ऊपर राज था चंगेज खान का, हाफ ऑफ द प्लैनेट वाज रूल्ड बाय चंगेज खान। और ये तुर्की से तातार, ये तुर्की से आए, ये मंगोल के आगे से, सो दे हिस्टोरिकल ये सब यहां से क्षत्रिय गए हुए। आफ्टरवर्ड्स दे हैव गिवन अप द ब्राह्मणिकल कल्चर, प्रभुपाद लिखते हैं, तो फिर उनका नाम यवन होता, था ही यवन महाराज, तो यवन हो गए। तो इस तरीके से इन सब का नाम लिखकर फिर देन दिस इज प्रभुपाद हैज गिवन हिस्ट्री। उसके बाद कहते हैं, ये प्रभुपाद का मिशन स्टेटमेंट है एक्चुअली, अबोव मेंशन हिस्टोरिकल नेम्स आर डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इवन दोज हु आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द सिनफुल एक्ट्स आर ऑल corrigible to the standard of perfect human beings if they take shelter of the devotee of the Lord. And then Prabhupada is a liberal Jesus Christ and peace be upon him, Muhammad. Two powerful devotees of the Lord have done tremendous service on behalf of the Lord on the service of the globe. Prabhupada is so liberal कि इन्होंने ऐसी दुनिया के अंदर यूरोप में यहाँ इन लोगों को सुधारने के लिए कितना प्रयास किया और फिर प्रभुपाद जी अपनी मिशन लेकर आए. सो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखाने के लिए. और प्रभुपाद ने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी रूलर्स एज ए डिवोटी बट इफ द रूलर एडवाइज अगर ये भक्त राजा महाराजाओं को मार्गदर्शन करने वाले हो जाए तो पूरा दुनिया शांत हो जाएगा. सो एक बहुत जैसे वेरी इंटरेस्टिंग वर्डिंग प्रभुपाद ने लिखी है. मैं एक ही शब्द पढ़ रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं. क्या करना चाहिए, कैसे सब दुनिया पवित्र हो जाएगी? यद कीर्तनाद, यद कीर्तनाद, जो भगवान का कीर्तन किया जाएगा. कैसे? प्रभुपाद लिखते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा. और फिर क्या लिखते हैं? Simply by glorifying Lord's holy name, a tremendous change of the heart can take place by which the complete, sun lijiye ye line, complete misunderstanding between human nations created by politicians can at once be extinguished. ये बहुत interesting line है. भगवत कीर्तन से क्या होगा? लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं. ये जो राजनीतिक हैं, ये लोगों को दिलों में जहर फैलाते हैं. सो दिस कीर्तन विल प्यूरिफाई द हार्ट. वो लोगों के हृदय को ऐसा पवित्र कर देंगे कि जो पॉलिटिशियन से उनको पॉइजन किया है वो निकल जाएगा. मिसअंडरस्टैंडिंग एक खत्म हो गई तो क्या होगा? देन अदर प्रॉफिट्स विल फॉलो. बाकी सब लाभ अपने आप होने लग जाएंगे. तो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रभुपाद जी का एक इंटरव्यू, अमेरिका का पुलिस कमिश्नर आया, बोला बहुत क्राइम यहां हो रहा है, आप क्या हमारे को राय देंगे कैसे करवाएं? हाउ कैन वी डिक्रीज द क्राइम रेट इन अवर कंट्री. अपने देश में कैसे हम अपराध कम करें? प्रभुपाद ने कहा हमारे को आप फैसिलिटी दो, हम कीर्तन करेंगे, लोगों का हृदय बदल जाएगा तो लोग पाप करना छोड़ देंगे. पाप लोग हृदय से करते हैं, पाप की प्रवृत्ति हृदय में होती है. आप कहो कि हाथ पाप करता है, हाथ काटेंगे, हाथ ने पाप नहीं किया, पाप तो अंदर दिल में पड़ा. तो आप हमारे को ये और प्रभुपाद 62 में दिल्ली में तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी थी कि हम बंदी भाइयों का भला करने के लिए उनको हरि कथा कीर्तन से उनके अपराध वाले भावनाओं को परिवर्तन करके सुधारना चाहते हैं. ये प्रभुपाद 62 का लेटर है तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को. बेस्ड ऑन दैट इस्कॉन हैज ए प्रिजन मिनिस्ट्री जो प्रिजन में जाके प्रचार करती है. और हम कई साल तक बहुत से प्रिजन में जाते थे प्रचार करने के लिए. तो जहां बंदी होते थे उसमें बहुत से जप करना शुरू किया. एक सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे बताया जेल के, बोला जो असल में अपराधी हैं वो सब बाहर हैं, ये तो सब मैं ऐसे ही फंसा के अंदर डाले हुए. ही टोल्ड मी रियली इस हमें जानते हैं कि ये अपराधी नहीं है लेकिन इनको ऐसे कानून में फंसाया निकल नहीं सकते. और एक तो मुझे उसने बताया कि एक आदमी भागता हुआ आया, बोला मुझे जेल में बंद करो. हमने बोला तुमने कुछ नहीं किया, बोला बाहर मुझे गुंडे मार देंगे, कम से कम जेल में सुरक्षित तो हूं. वो अपने आप आया, बोला वो बदमाश उसको ऐसा परेशान किया वो अपने आप जेल में आया, बोला मेरे को इधर रखो. तो ये असल में वहां बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बदमाश बहुत कम होते हैं, अच्छे बहुत हैं. एक बार जब मैं कराची में रहता था तो एक बार न्यूज़पेपर में आया कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर पत्रकार पागलखाने में गया, मेंटल हॉस्पिटल में. तो देखा एक नया रोड बना पड़ा था, बोला कितना खर्चा लगा इसका? बोला 30,000 में बना है. बोला 30,000 में कैसे बनेगा? बाहर हम गवर्नमेंट बनाती है तो कम से कम 50 लाख लगते हैं, या 30,000 में कैसे बन गया? बोला ये सब जो यहाँ काम करने वाले हैं, जो यहाँ हमारे हॉस्पिटल के मेंटल, ये जो यहाँ इनमेट हैं, इन्होंने सब काम किया, हम तो सिर्फ रोलर हायर करके बाहर से लाए थे. आश्चर्य लगा, कमाल है, बाहर जो 3 लाख में बने अंदर 30,000 में बन रहा। फिर गया देखो, एक पागल खाना लेने के लिए 2 बावल लेके खड़ा है। तो उसने बोला काय के लिए ले रहे हो 2? बोला एक मेरा पार्टनर बीमार है, एक उसके लिए ले जा रहा हूं। उसने बोला 3 लाख की चीज 30,000 में बीमार के लिए खाना ले जा रहा है और बाहर दूसरे का खाना झपट रहे हैं। फिर उसने रिपोर्ट लिखी, ऐसे लगता है कि अच्छे आदमी इतने कम हो गए थे, उनको पागल खाने में डाल के पागल सारे बाहर निकल गए। तो असली बदमाश सब बाहर है और जो अच्छे आदमी थे उनको अंदर बंद कर दिया है। इसके ऊपर मेरे को हंसी की बात याद आती, पागल खाने में स्विमिंग पूल बनाया, तो पागल तो स्विमिंग पे एक डूब रहा था, तो दूसरे ने ऐसे कहा क्या हुआ, जंप निकाला, उसको निकाल दिया। तो वो सुपरिटेंडेंट पूरी मीटिंग बिठाई कि ये पागल नहीं हो सकता है, डूबते को निकाला है, जान बचा दी, इसको कल बुला के इसको तो पागल खाने से अभी छुट्टी देनी चाहिए। उसको बुलाया, कहा तुमने अच्छा काम किया, कल उसकी जान बचाई, हम चाहते हैं कि तुमको अब घर भेज दें, लेकिन एक दुख की बात है, आपने उसकी जान बचाई लेकिन वो पंखे में बंधा हुआ सुबह उसका प्राण निकल गया। बोला मैंने ही तो उसको सुखाने के लिए डाला था। वो गीला हो गया था कपड़े के साथ, उसको मैं सुखा। डॉक्टर ही बेहोश हो गया, बोले इसको तो बंद करो। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी असल में अपना सारा अनुभव लिख रहे हैं कि वैष्णव जो हमारा प्रचार का प्रणाली है, शैली है, दी वे है, वी एक्सेप्ट एनीबडी एंड एवरीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम एनी वॉक ऑफ द लाइफ, कहीं से भी हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, अगर भगवान की भक्ति करना चाहता है तो हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। और हम अपने आंखों से देखते हैं कि प्रभुपाद इन सब जातियों में भक्त बने हैं, इस्कॉन के इन सब जगहों से इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद के संपर्क से बने हैं, अफ्रीका के प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद की बाहर धोती सुखाते उसी को चुरा के जाते, प्रभुपाद ढूंढ रहा धोती कहां, धोती गुम, कौन ले गया, वो अपने शिष्य ले गया, बोला ये हमारी पुरानी आदत है, अब कहते हैं वापस ला के देता हूं, लेकिन हम किसी सफेद कपड़ा देखते हैं तो उठाने का मन करता है, साफ कोई पड़ा है। तो ऐसे थे वो, चोरी गुरु जी की ही चोरी करते थे, लेकिन उनके ऊपर कितनी कृपा की है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद अपने जीवन में लिखते हैं, कंक्लूजन इज दैट कि भगवान इतना शक्तिशाली है, एकदम कहते भगवान इतना शक्तिशाली है, कृष्णा इज सो पावरफुल कि कैसा भी पापी क्यों ना हो। और फिर भगवत गीता का ये श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने, कौन सा किया होगा, अपिचेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी है लेकिन भगवान के भक्तों के संग में आ जाए, भगवान का नाम जपना शुरू कर दे तो समझ लो कि उसका उद्धार हो जाएगा, फिर उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं सुखदेव महाराज, ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भाई सृष्टि में तो ये भी सृष्टि में सब लोग हैं ना, ये भी तो भगवान ने पैदा किए हैं, तो इन लोगों का भी भगवान के भक्त उद्धार कर सकते हैं, तो सृष्टि असल में इन सब लोगों के उद्धार के लिए, तो सृष्टि भगवान करते हैं तो सृष्टि किसकी करते हैं, आध्यात्मिक जगत में तो सृष्टि होती नहीं है, देर इज नो क्रिएशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देर इज इटर्नल, ये तो भौतिक जगत में सृष्टि होती है, तो सृष्टि किसकी होती है, जो दोज हुआ रिबेलियस ऑफ द लॉ ऑफ गॉड, भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, धर्म का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए ये दुनिया बनती है। तो इसका मतलब पाप कर्म ही आते हैं प्राय यहां, तो उन सबका उद्धार करने के लिए ही तो सृष्टि की है भगवान ने, तो इनका उद्धार नहीं करेंगे तो फायदा क्या हुआ, तो ऐसे लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु की आज शरण लेना चाहिए, जो सबसे बड़े पापियों का उद्धार करने का कार्य करते थे। तो पापी से बड़े पापी, हरिदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद ने जगाई माधाई का उद्धार किया, और प्रभुपाद ने तो लाखों जगाई माधाइयों का उद्धार किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके उद्धार करने के लिए ही सृष्टि है, कि ऐसे भी लोगों का उद्धार भगवान भगवान के भक्तों के द्वारा करा लेते हैं। अब आगे आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 19वां श्लोक। स एषा आत्मात्मवान अधीश्वरस् त्रयीमयो धर्ममयस् तपोमयः गतव्यलकैर् अजशंकर आदिभिर् वितर्कय लिंगो भगवान प्रसीदताम। अब ये तीसरा विभाग शुरू हो गया, पहले नमस्कार पूरा हो गया, फिर सुभद्रे सर्वस्य हो गया, और अब क्या है, प्रसीदति, भगवान प्रसन्न हो जाएं। कौन से भगवान? अब वहां कैसे लोग थे, हूण क्राद आंधेर पुलकस, वो थे पापी, और ये हैं सारे पुण्यात्मा। अब इनको, इनके बारे में लिखा है, कौन कौन है ये? स एष, स मतलब भगवान, वो भगवान आत्मा, आत्मवान ये है ज्ञानी, जो अपने आप को आत्मा का चिंतन करते हैं, ज्ञानी जो अब आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चलते हैं। अधीश्वर, उनका भगवान अधीश्वर है, तो ज्ञानियों के आत्म तत्व का भी स्वामी भगवान है अधीश्वर। अधीश्वर, अधि का मतलब अध्यक्ष, उसके नीचे काम करते हैं सारे। त्रयीमयो, त्रयीमयो का मतलब वेद का, वेद के रास्ते के ऊपर चलने वाले, त्रयीमयो ये त्रयी वेदा माम सोम पापूत पापा, तो तीन वेदों के पाठ करने वाले कर्मकांडी हो गए। और उसके बाद है धर्मस्य तपोमय, और धर्म और तप करने, योगी तपस्या करते हैं, धर्म के मार्ग के ऊपर चलते हैं, इन सबका अधीश्वर भगवान है। और उसके बाद कहते हैं ये सब भी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जिसको भगवान मिलता है? तो इस श्लोक में मोस्ट जो जो मुख्य शब्द है वो है गतव्यलीकय। गतव्यलीका का क्या अर्थ है? गत का मतलब चला गया जिसके अंदर से, और व्यली की संस्कृत का अर्थ हिंदी में है मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, और अंग्रेजी में है प्रिटेंशन, प्रिटेंशियस बिहेवियर, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करे। अगर कोई, और इसका अर्थ जीवा गोस्वामी ने क्या किया है, गत वैली का इज इक्वल टू धर्म प्रोजित, धर्म प्रोजित, धर्म प्रोजित का मतलब चीटिंग रिलीजन से ऊपर, जो कोई सीधा आदमी, मतलब भक्त, गत वैली का मतलब भक्त। तो गत वैली की उसका उदाहरण किसका दे दिया, कौन है ऐसे, बोला अज, अज को कौन है, ब्रह्मा, और शंकर, भगवान शंकर, आदि भी कुमार लक्ष्मी, इसका अर्थ प्रभुपाद जी लिखते चार वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, ब्रह्मा जी ब्रह्मा मध्व संप्रदाय, शंकर जी रुद्र संप्रदाय, और उसके बाद चार कुमार विष्णु स्वामी संप्रदाय, और लक्ष्मी श्री संप्रदाय। इसका मतलब आल वो सब वैष्णव, उधर सब पापी और इधर सब वैष्णव। अब उधर क्या हो रहा था, उनको पवित्र किया जा रहा था, और यहां भगवान प्रसन्न हो जाए, यहां भगवान की प्रसिद्धि, क्योंकि ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, इनका काम है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये भी वृक्त, हां वितर्क्य लिंगो, वितर्क्य लिंगो का मतलब क्या है, शंकर ब्रह्मा आदि भगवान के ऊपर कोई वितर्क नहीं करते हैं, तर्क वितर्क करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो जो भगवान की गहमा गाते गाते गा रहे हैं, लेकिन पूरी रूप से भगवान को वो भी नहीं जान पा रहे। तो ऐसा भगवान जिसको इतने बड़े, जिसको ज्ञानी ढूंढ रहे हैं, जिसको वेदज्ञ यज्ञ करने वाले पंडित ढूंढ रहे हैं, जिसको तपस्वी योगी ढूंढ रहे हैं, जिसको ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी महिमा गा गा के सुना रहे हैं, वो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अब क्या कहते हैं, प्रसन्न हो जाए, नमस्कार, श्रवण और प्रसीदति, तीन भाग है। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले आके मंदिर में नमस्कार करना चाहिए, फिर कथा सुननी चाहिए और फिर कहना चाहिए भगवान प्रसाद खाने से हाँ आप प्रसन्न हो जाओ, हम भी प्रसन्न हो जाएं। प्रसीदति, भाई भगवान प्रसन्न कब, भक्त प्रसन्न तो भगवान भी प्रसन्न, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। प्रसीदति, भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तो पहले प्रसीदति तीसरे नंबर पे, पहले नमस्कार है, फिर श्रवण है, फिर प्रसीदति। तो इसका मतलब भगवान प्रसन्न कब होते हैं, जब नमस्कार करके और श्रवण करता है। नमस्कार करना भक्ति शुरू करता है और श्रवण भक्ति के आरंभ है, नमस्कार बिगनिंग है और उसके अंदर श्रवण करेगा तो फिर आगे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी और भगवान की प्रसन्नता से कुछ भी कर सकता है। तो अब इस श्लोक में अर्थ क्या हो गया, जो ज्ञानी आत्म साक्षात करते हैं उनका भी स्वामी भगवान है, जो धार्मिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो वेद का पाठ करते हैं, यज्ञ के आदि करते हैं, उनका भी स्वामी भगवान है, जो तपस्या करते हैं उनका भी स्वामी भगवान है, और ऐसे भगवान को ब्रह्मा और शंकर आदि गत व्यलिक ही, गत व्यलिक का मतलब निर्मत्सराणाम, शुद्ध भाव से जो उनका भजन करते हैं, कोई प्रिटेंशन नहीं, दिखावा नहीं करते, का मतलब क्या है, यहां ब्रह्मा जी को जब उसके बेटे नारद ने आके प्रणाम करके कहा, इसी में आगे आएगा कि पिताजी ये सृष्टि आपने की है, ये सृष्टि तो आपके ऐसे इशारे से हो जाती है, तो आप ही तो भगवान है, आपको मेरा प्रणाम है। और इतना कह के फिर नारद जी बड़ी होशियारी से बोलता है, आप भगवान है, मेरे को विश्वास लगता है कि आप ही सृष्टि करता है, लेकिन आप ध्यान किसका करते हो, क्या आपके ऊपर भी कोई है क्या। सो ही हैज पुट अ डाउट, आप किसका ध्यान कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी गत वैली का है, वो दिखावा नहीं करता है झूठ का कि मैं भगवान हूं। उसने तो चार मुख है तो आठ कान हो गए, आठ हाथ पहले कानों में डाले, बोला नहीं 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 मैं भगवान नहीं हूं, पहले बोला मैं भगवान नहीं हूं। जो भगवान की माया से मूर्ख मोहित होते हैं वो मुझे भगवान मानते हैं, ये मूर्ख है। अरे हम तो सब संसार में बेटा उस बैल की तरह है जिसके नाक में रस्सी डाल के मालिक जहां ले जाता है वहां चलना पड़ता है, स्वामी तो हमारा ऊपर है दूसरा, हम तो उसके आज्ञाकारी है। तो ब्रह्मा जी स्वयं नारद अपने बेटे को, जो भगवान का अवतार है उसको, और ब्रह्मा जी स्वयं गुण अवतार है, कह रहे मैं भगवान नहीं हूं, और यहां ब्रह्मा के बनाए हुए ये पागल अपने आप को भगवान कहने की कितनी मूर्खता करते हैं, उनका क्या कहना चाहिए। सो मेनी पीपल क्लेम आई एम गॉड, ब्रह्मा हंसता है बोला मैं नहीं हूं बनाने वाला, तू कहां से हो उल्लू का पट्टा, जब मैं ही नहीं था तू कहां से हो गया, कैसे तुम भगवान हो गया। तो ये ब्रह्मा जी गत वैली का, ब्रह्मा जी कैसे हैं, जैसे है अपने आप को वैसे बता रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं उस पर किसी ने कहा कि मैं भगवान हूं तो मैं बैठ जाऊं वैसे कि मैं भगवान हूं, नहीं। तत्काल एक बार एक दक्षिण भारत का बहुत बड़ा तांत्रिक सब कुछ जानने वाला दिल्ली में आया और प्रभुपाद जी की व्यास गुरु पूजा हो रही थी, तो आरती करते हुए गा रहे थे श्री गुरु चरण पद्म, तो प्रभुपाद भी श्री गुरु चरण पद्म साथ साथ गा रहे थे। तो वो देख रहा था, पूछा उसने लोकनाथ स्वामी से कि ये गुरु जी क्यों ऐसे गा रहे हैं, बोला ये अपने गुरु जी के लिए गा रहे हैं, भाई हम अपने गुरु के लिए गाए तो ये अपने गुरु के लिए गा रहा है। तो उसने बोला तो ये बोनाफाइड लग रहा है गुरु, असल में ऐसा नहीं है कि अपने को समझता है मैं गुरु, वो तो जो इसको मिला है वो ऊपर भगवान तक पहुंचा रहा है, और वो फिर प्रभुपाद का शिष्य बना, देन ही एक्सेप्टेड प्रभुपाद एंड ही बिकम हिज डिसिपल, आत्म तत्व प्रभु, बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत बड़ा स्कॉलर सब जानने वाला, वो ये प्रभुपाद के अंदर देखा कि ये अपने आप को गुरु का वंदना जब करते हैं तो लेने के लिए नहीं, ये एकदम स्वयं भी गा के अपने गुरु को अर्पण कर रहा है, वो उसका गुरु उसके गुरु को अर्पण कर रहा है। अब ये गत वैली का हुआ, ये गत वैली का मतलब है कि आप दिखावा नहीं करो कि मेरी पूजा हो रही है तो मैं इसका लायक हूं, तत्काल उसको ऊपर चैनल में डाल दो कि भगवान की तरफ चली जाए, आप उसका पकड़ने वाला बीच में नहीं बन जाओ। इसको बोलते हैं वाया मीडिया। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? वाया मीडिया। स्पिरिचुअल मास्टर इज ए वाया मीडिया। वाया मीडिया किस, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया का अर्थ क्या है? ये जैसे ग्लासेस है, ये चश्मा पहनते हैं ना, चश्मा क्या है? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। किस चीज के लिए? बाहर की चीज चश्मे से अंदर हम देख सकते हैं, और चश्मे से कोई बाहर से देखना चाहे तो हमारी आंख को भी देखा। आजकल लोग दूसरा चश्मा पहनते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपनी आंख नहीं देखने देते। ये वेलकी है, गत वेली का नहीं है। ये धोखेबाजी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान की कृपा गुरु परंपरा से, ट्रांसपेरेंट गुरु से शिष्य तक पहुंचे। वो बीच में पत्थर न बन जाए कि कृपा को नीचे आने न दे। ट्रांसपेरेंट वाया, और शिष्य की दी हुई सेवा पूजा गुरु के द्वारा परंपरा से भगवान तक पहुंचे। तो ये ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया की मीनिंग ही है कि वो हमको देख कृपा कर सके वहां से, और हम गुरु के थ्रू भगवान को परंपरा के थ्रू देख सके। तो ये ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया का अर्थ है। वो जो चश्मा ठीक ठाक है तो सब कुछ दिखता है, और ये थोड़ा सा खराब हो गया तो कुछ नहीं दिखता है। तो गुरु जी वाला चश्मा जो है ना, वो साफ साफ होता है। तो ही ऑलवेज ही नेवर थिंक, ये बहुत बड़ी बात है, गत व्य लिखा। तो श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सीधा लिखा है, फोकस किस बात के ऊपर है? फोकस इस बात के ऊपर है कि तीन ऊपर तीन लिखे हैं, कर्मी है, ज्ञानी है और योगी है। कर्मियों की क्या इच्छा है? यहां लिखा है कर्मी क्या है, वो क्या चाहते हैं? भुक्ति कामी, उनको भोग चाहिए, संसार का भोग चाहिए या स्वर्ग का भोग चाहिए, वो है भुक्ति कामी। और ज्ञानी जो है वो क्या है? मोक्ष कामी। वो कहते हैं हमको भगवान के ब्रह्म ज्योति में मुक्ति। और जो योगी है उनकी क्या कामना है? सिद्धि कामी, हमें सिद्धि चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त है वो क्या है? निर्विलकई है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? भगवान की सेवा चाहिए। इसलिए वो क्या है? निष्काम। तब प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। तो यहां इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है सुखदेव गोस्वामी का, कि अब मैं भागवत के अंदर कहीं कहीं ज्ञानियों का वर्णन भी करूंगा, कहीं योगियों का वर्णन भी करेंगे, भागवत में ये सब कुछ है, कहीं वेद यज्ञों का वर्णन भी करेंगे, लेकिन इन सब वर्णनों के पीछे भगवान मैं आपको अधीश्वर मान के, जैसे ब्रह्मा जी जैसे शंकर जी आपकी महिमा गा रहे हैं, ऐसे ये सब आपकी महिमा में मैं गाऊं, आपसे अलग न कहूं। तो जो सुखदेव महाराज इज एज मूड इज, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल दीज डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट मेथड्स, लेकिन ये सब आप भगवान श्री कृष्ण, क्यों अभी तक श्री कृष्ण शब्द आया नहीं है, अभी तक भगवान आ रहा है, अभी श्री कृष्ण इसके बाद वाले श्लोक में आएगा। टाइम क्या हो गया, कितना टाइम हो गया?
डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए, जब तक आएंगे प्लस में
क्या है,
यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम फेवर डिवाइडेड
टुडे, सो टिल दैट टाइम द। अच्छा, हरे कृष्णा, हरि बोल। कभी कभी प्रसाद देर से आता है तो क्लास सुननी पड़ जाती है। इसको कहते हैं भगवान प्रसाद, भी भगवान की कृपा है, कभी कभी क्लास सुनाने का संयोग बना देता है। तो इस श्लोक से साधन, प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त है वही भगवान को पा सकते हैं, लेकिन दूसरे भी आध्यात्मिक मार्ग के चलने वाले, उनका भी वर्णन भागवत में है। लेकिन सुखदेव महाराज कहते हैं मैं जब उनका वर्णन करूं तो भगवान मैं आपका ध्यान करता रहूं। कैसे करता रहूं? जैसे ब्रह्मा शंकर आदि आपका गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं, मैं इनके विचार करते हुए आपसे विचलित होके दूसरे किसी पथ की बात न करूं और मैं आपकी महिमा गाता रहूं, ऐसे इसके वर्णन है। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं, इसका पर्पट बहुत लेंथी है जी, अब आइए पढ़िए, बहुत अच्छा है। ये सब पति तैयार हो जाइए। श्रीयपति यज्ञपति प्रजापते धियानपते लोकपते धरापति पतेर गतेश्च अंधक वृष्णी सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति। अब इसमें जो दो शब्द आ गए वृष्णी सात्वताम च अंधक, अंधक और वृष्णी के पति कौन है? कृष्ण, वृष्णी वंशी कृष्ण है। तो अभी नाम आ गया कृष्ण का, तो सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना किसको कर रहे हैं? बोला कृष्ण को कर रहे हैं। वो तो कृष्ण को ही प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक नहीं कहा, अब कह रहे हैं। क्यों ऐसे कहा? सीधा क्यों नहीं पहले कह दिया कृष्णाय नमः? क्योंकि जब कथा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज अकेले नहीं थे जो कृष्ण भक्त है, परम अनन्य भक्त है। बहुत सारे ऋषि थे, कोई त्रिपुंड वाले ऋषि थे, कोई कैसे ऋषि थे, कोई ज्ञानी थे, कोई योगी थे, कोई तपस्वी थे। तो उन सब के लिए भी बात करते करते फिर जो मुख्य बात है वो बता रहे। तो क्योंकि ऑडियंस में वो सब लोग बैठे थे, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद का कहना है। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सब जो लोग आए हैं मेरी कथा सुनने के लिए, उन सब का नाम है, उन सब का पहले स्कंद में परीक्षित महाराज गंगा के तट पे आए तो अत्रि आया, कणाद आया, गौतम आया, इन सब का नाम और इन सब का वर्णन है। तो इतने सारे ऋषियों में सारे ही कोई शुद्ध भक्त नहीं थे, कोई ज्ञानी थे, कोई तपस्वी थे, कोई योगी थे, तो उन सब का नाम लिखा है। लेकिन अब कह रहे हैं कौन से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं? बोला वृष्णीपति। अब वृष्णीपति कौन है? वृष्णीपति भगवान श्री कृष्ण है। तो अब क्या कौन किस किस का पति है? पहले पति का अर्थ तो समझ लो, पति का अर्थ क्या है भाई? माता जी लोग पति, तो पति का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण। वैसे डॉक्टर साहब एक मेडिसिन में पेशेंट शब्द जो है ना, वो शब्द पति से निकला हुआ है, उसका मतलब मिजरेबल। नहीं, एक ने मेरे को मैसेज, डॉक्टर ने भेजा था कोट करके, अंडरलाइन करके, कि जो पेशेंट शब्द है तो पेशेंट में जो पति पहले वो हैरिसन की मेडिसिन से, उसने उसकी जो लेटिन लैंग्वेज से जहां से शब्द निकला है वहां से लिया था। ये तो आजकल के पतियों की बात कर रहे हैं जो डॉक्टरी में आते हैं, लेकिन संस्कृत में पति का अर्थ है पात्यतेति पति, जो को रक्षा करे, जो अपने आश्रित पत्नी बच्चों की रक्षा करे उसको पति। और पत्नी का अर्थ क्या है? जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए बचाए वो पत्नी। पत्नी को कहीं कहीं बोलते किला है, फोर्ट है, जिसमें सुरक्षित पुरुष सुरक्षित रहता है, पतन से बच जाता है। तो और पति पत्नी का रक्षा करने वाला है, पात्यति इति पति, पात्यति इति पति। तो कौन पति है असल में? भगवान के अलावा और कोई पति नहीं, एक ही भगवान पति है। अब किस किस के पति है? सब दुनिया में कहते हैं धन हमारे को चाहिए, लेकिन धन लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति कौन है? श्रीय पति ही भगवान लक्ष्मी पति है। और एक लक्ष्मी नहीं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है सहस्र लक्ष्मी संभ्र सेव्य मानम, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। दुनिया लक्ष्मी के पीछे है और सारी लक्ष्मियां भगवान के पीछे है, इसलिए भगवान लक्ष्मी पति है। आपके पास कितना भी धन कभी आ जाए तो आप कभी धनवान धनपति मत बनना, क्योंकि वो तो भगवान पहले से है। तो इसलिए कोई कुछ चीज भी अपने पास आए तो कहना चाहिए है तो लक्ष्मी पति का दिया हुआ। तो भगवान पहले लक्ष्मीपति है, फिर यज्ञपति, यज्ञपति तो भगवान है, यज्ञ का अर्थ भी भगवान है विष्णु, और यज्ञ का फल देने वाला भी भगवान है, और यज्ञ का अधिष्ठाता भगवान है। तो यज्ञपति भी भगवान है और यज्ञ फल का फल देने वाला भी भगवान है। और भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने जब सृष्टि किया तो पहले मैंने देवता और मानव और यज्ञ को सृष्टि किया, तीन चीजों का बोला, यज्ञ, मानव और देवता, और फिर क्या, मैंने आदेश दिया, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा वह प्रजापति प्रोवाच प्रजापति अनेन वे पृष्ठद्वम, आप ये यज्ञ करो। बोला क्यों करें, तो भगवान ने क्या कह दिया, इष्ट काम दुख आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये यज्ञ कल्प वृक्ष है, भगवान तो कल्प वृक्ष है ही, कल्प वृक्ष और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, कल्प वृक्ष और भगवान एक ने बराबर नहीं है। कल्प वृक्ष तो संसारी चीजें देती है, भगवान का भक्ति तो नहीं दे सकता है कल्प वृक्ष, उसके पास ये नहीं है। तो भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, आप यज्ञ करो, यज्ञपति है, तो भगवान ने ये सबको कह दिया यज्ञ करो। तो ये कभी कभी लगता है यज्ञ सब कैसे कर पाएंगे, आज को तो घी भी नहीं मिलता है, पंडित भी नहीं मिलता है, और हम एक फ्लैट वन रूम वाले में रहते हैं, यज्ञ करेंगे तो धुआं ही धुआं हो जाएगा, अलार्म बजेगा चारों ओर से लोग कटे हो जाएंगे। आजकल के घर ऐसे बने हैं धुएं से अलार्म बजता है। वो नए नए भक्तों ने कहा, मेरे ख्याल लॉस एंजल्स में या वो एक घर लिया और किराए पे, और अंदर वो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आपको सब्जी को जो है वो चांच देना है, तो घी किया गरम, उसके अंदर डाला जीरा और निकला धुआं शू, और लगे बेल और आ गई बाहर से गाड़ियां और फायर ब्रिगेड वाली, अरे वो दाल बन रही है भाई, कोई आग नहीं लगी, ओ पूरा पूरा देश इकट्ठा हो गया, और मालिक मकान ने वो दाल के देगड़े के साथ उनको उसी वक्त बाहर निकाला, अरे तुम तो खतरा हो, यहाँ सारा दिन घंटी बजती रहती है। वो बेचारा वो सामान लेके बाहर आके रोड पे खड़े हो गए, अब जाए कहां, वो कह रहे अरे हमारा पति तो भगवान है, ये तो बेचारा ये तो मालिक मकान समझता है मैं इसका पति हूं। तब तक बुढ़िया कहीं से एक आ गई, बेटा यहां क्या कर रहे हो, बोला ये सामान लेके इस घर से बाहर निकले हैं। बोला मैं अकेली रहती हूँ, सफाई वाला आदमी नहीं, आप मेरे घर में रहोगे। बोला अंधे को दो आंखें चाहिए, हाँ एक चाहिए, दो मिल गए, चलते सीधे उसके घर चले गए, घर को साफ किया और उधर जाके दाल को दोबारा गरम करके खाया। तो ये यज्ञ कैसे करें, बात ये हो रही थी, यज्ञ भगवान ने कहा सब करो, यज्ञ करें कैसे, कौन सा ऐसा यज्ञ जो सब कर सकते हैं। तो भगवान ने दसवें अध्याय में ऐसा यज्ञ बता दिया, सब कर सकते हैं, बूढ़ा कर सकता है, माता कर सकती है, बच्चा कर सकता है, घर में कर सकते हैं, गाड़ी में कर सकते हैं, आग की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, रुपया खर्च की जरूरत नहीं, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूं। तो ये जो हम रोज कर रहे हैं जप, ये बड़ा यज्ञ हो रहा है भाई, ये जप यज्ञ है, बहुत महान यज्ञ है। कैसा यज्ञ, बोला हिमालय जैसा यज्ञ, बाकी यज्ञ का फल मिले ना मिले, ये तो हिमालय की तरह ये यज्ञ सदा रहेगा ऐसे का ऐसे। क्यों भाई, प्रसाद कल है कि आज है? हरे कृष्णा, ये छुट्टी है, ये तो आज रात पूरी कथा चलाते हैं, ये भागवत का दूसरा स्कंद पूरा करते हैं आज, आप सब बैठे हैं ना, क्या करें, कहां जाना है, कल सुबह वैसे ही आना है भागवत में, चलेगा? हरे कृष्णा। कभी ऐसा रस आना चाहिए भागवत में कि लड्डू आने वाला एकदम लेके आ जाए, देखो आ गया। भागवत में रस ऐसा आना चाहिए कि बंद करने का मन नहीं करे। महाप्रभु वाले रात सारी कीर्तन करते थे, सूर्य उगता था तो लगता था ये मुसीबत कहां से आ गया, हमारा कीर्तन बंद करा रहा है। तो ये क्या बात है मुख्य, हरे कृष्णा। तो ये पतियों का बात अभी कल करेंगे, आजकल अभी लड्डू पति आ गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।